दिन भर तारीख 9 अगस्त दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मुंबई में मराठा समाज के प्रदर्शनकारी आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन।
मराठा समाज एक किसान है, उनको रिजर्वेशन, उनको बच्चों को उनके भविष्य के लिए एजुकेशन में सर्विस में रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
करेंगे विश्लेषण की इसका राजनीतिक भविष्य क्या है। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्कूली छात्रा की कथित तौर पर छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या का मामला सामने आया। भारत पाकिस्तान विभाजन पर उन दो शहरों की कहानी जिन्हें जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता था। कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। महाराष्ट्र के मुंबई में आज मराठा महारैली का आयोजन हुआ। इस मूक रैली में 4 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत की। ये लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण, कृषि ऋण में माफी, कृषि उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य और कोपर्डी बलात्कार मामले में दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल मुंबई में तकरीबन 57 जगहों पर मराठा रैलियाँ निकाली गई थी, जिनमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। 75 साल पहले आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैली थी। यह एक ऐसा व्यापक आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नारा दिया गया, करो या मरो। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में इस आंदोलन को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
फिट इंडिया के 75 साल और आजादी के 75 साल के बीच का 5 साल 42-47 का जो मिजाज था, वही मिजाज अगर दोबारा हम देश में पैदा करें, 2072-2022 आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हम देश के हमारे आजादी के वीरों के जो कामनाएं थी उन सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने आप को खपाएंगे, हम अपने संकल्प को लेकर के आगे चलेंगे। आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ये मिजाज देशवासियों का बन गया था। और इसके कारण उस आंदोलन में इस देश का छोटा मोटा हर व्यक्ति जुड़ गया था।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इस समय देश में नफरत और विभाजन का दौर चल रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है, हमें इन्हें बचाने के लिए काम करना होगा। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। विकास बराला और उनके साथी पर एक महिला के अपहरण की कोशिश करने के आरोप लगाए जाएंगे। इससे पहले बीते शुक्रवार रात एक आईएएस अधिकारी की बेटी ने विकास बराला पर उनकी गाड़ी का पीछा करने और उनको रोकने का आरोप लगाया था। घटना के बाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उनके देश को उत्तर कोरिया से कोई खतरा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को कड़ा संदेश दिया है और उन्हें उम्मीद है कि उत्तर कोरिया के नेता इसे समझेंगे। मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि उत्तर कोरिया से और खतरा हुआ तो उन्हें आग, गुस्से और हमारी शक्ति का परिचय मिलेगा। इसके जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा कि वो पश्चिमी प्रशांत इलाके में मौजूद अमरीका के गुआम इलाके में मिसाइल हमले के बारे में सोच रहा है। चीन, फ्रांस और जर्मनी ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्टिन शेफर ने कहा,
Wir verfolgen die zunehmende rhetorische Eskalation rund um die koreanische Halbinsel mit größter Sorge.
हम कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास और इससे संबंधित बयानबाजी को गंभीर चिंताओं के साथ देख रहे हैं। मौजूदा स्थिति वास्तव में बेहद गंभीर है। एक दूसरे को धमकी देने से कोई मदद नहीं मिलेगी। एक परमाणु हथियार मुक्त दक्षिण पूर्व एशिया बनाने के लिए सैन्य विकल्प कोई समाधान नहीं हो सकता, ना ही यह उत्तर कोरिया के उकसावों से निपटने के लिए ही कोई तरीका है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। ये थे जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्टिन शेफर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में पुलिस ने सैनिकों पर हमला करने वाले हमलावर का पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस को उसे गोली मारकर घायल करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने गिरफ्तारी की जगह पर एक BMW कार देखी जिस पर गोलियां मारी गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। साथ ही जो लोग हमें फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं, आपका अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी अभी आपने मानसी दास से सुना, मुंबई में आज मराठा समाज ने आरक्षण व अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। पूरे राज्य से करीब 5 लाख लोग मुंबई में एकत्रित हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुंबई की सड़कों पर भगवा रंग के झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। कई स्कूल कॉलेज बंद रहे, सड़कें ठप, यातायात बुरी तरह से चरमरा गया। मुंबई से हमारे सहयोगी अश्विन अघोर की ये रिपोर्ट सुनिए।
महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की आखिरी कड़ी में आज मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसके पहले राज्य के 57 अलग अलग शहरों में इस तरह के प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र का मराठा समाज अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इस समाज की मुख्य मांगों में आरक्षण, अहमदनगर जिले के कोपरडी में हुए बलात्कार और हत्या के अभियुक्तों को फांसी की सजा शामिल है। हालांकि प्रदर्शन के आयोजकों ने दावा किया था कि आज के प्रदर्शन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे, लेकिन पुलिस के अनुसार केवल 5 लाख लोग ही मुंबई पहुंचे। जैसा कि अब तक राज्य भर के प्रदर्शन में होता आया है, प्रदर्शनकारी पूरी शांति और अनुशासन के साथ मुंबई के आज़ाद मैदान में पहुंचे, जहां मराठा समाज की युवतियों ने लोगों को संबोधित किया और समाज की समस्या तथा मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज सुबह प्रदर्शनकारी आज़ाद मैदान पहुंचने के बाद कई राजनेता भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा में भी मराठा विधायकों ने आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। इस प्रदर्शन के बारे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण राणे ने कहा,
सबसे बड़ा मोर्चा है और ये मोर्चे के बाद सरकार जो मराठा मोर्चे में मोर्चे के लीडर लोग निवेदन देंगे, उसे जो पहली बात है आरक्षण की, उस पे सरकार जरूर सोचेंगे और मराठा समाज को न्याय देंगे।
मराठा समाज के आंदोलन को सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है, साथ ही साथ कई सामाजिक संगठन भी मराठा समाज के साथ खड़े है। शिव संग्राम संगठन के अध्यक्ष विनायक मेटे का कहना है,
मराठा समाज एक किसान है, खेती करने वाला समाज है। उनको रिजर्वेशन, उनको बच्चों को, उनके भविष्य के लिए एजुकेशन में, सर्विस में और दूसरे इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड है।
आजाद मैदान में प्रदर्शन के बाद मराठा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार मराठा समाज के आरक्षण का समर्थन करती है और उसे लागू करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने मराठा समाज के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट होने के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। बीबीसी हिंदी के लिए मुंबई से अश्विन अघोर।
मराठा समाज की आरक्षण की मांग मुंबई आज थम सी गई। विश्लेषण के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से और पूछा कि ये आंदोलन कितना प्रभावी है।
देखिए, आंदोलन का प्रभाव कितना है ये तय करने का जो पैरामीटर होता है वो आंदोलन जिस इश्यूज पे चलता है, वो इश्यूज कितने सफल हुए, उसके जवाब क्या मिले आपको, आप जिनके खिलाफ, जिस सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, उस सत्ता पक्ष ने आपकी जितनी डिमांड्स है उसमें से कितनी डिमांड्स मान ली, उस पर उसका प्रभाव तय होना चाहिए। मुझे लगता है आज जो यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन इन्हें दिए, ये तो सारी चीजें 2016 के दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में ही कही थी। जो प्रमुख मांग है उनकी आरक्षण को लेकर के, वो आरक्षण अगर मराठा समाज को ओबीसी में इंक्लूड किया जाता है तो ही कानून के तहत इनको मिल सकता है। लेकिन अगर इस तरह से इंक्लूड किया जाएगा इतने बड़े समाज को, तो जो ओबीसी समाज है वो ओबीसी समाज बहुत ही ऑफेंडेड फील कर सकता है। और इस कारण उस मांग के ऊपर तो उनका कहना है कि वो कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो उस पर कुछ भी ये नहीं हुआ है। जो एट्रोसिटी की मांग है वो तो केंद्र सरकार का कानून है, तो वो बदलना है तो उस पर तो केंद्र सरकार पहल कर सकती है, तो वो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम केंद्र सरकार को विचार करने के लिए कह सकते हैं, इतना ही उन्होंने कहा है। कुल मिलाकर ऐसे कुछ नई कोई डिमांड उनकी या कोई खास विशेष करके जो प्रमुख उनकी मांगे है उसमें से कोई मांग इस सरकार ने मान ली है, ऐसा तो आज के जो सरकार का निवेदन है ये देख के नहीं दिखा।
लेकिन समझ, इतनी भारी तादाद में लोगों का जमा हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी भी एक आंदोलन के लिए, और जनता की बात तो सरकार को सुननी ही पड़ती है।
देखिए इससे भी बड़ी भारी मात्रा में मराठा मोर्चा निकले हैं। आज का मोर्चा ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो एक 20-25 मोर्चा इस राज्य में निकले अलग अलग जिलों में, उसमें ये सबसे बड़ा मोर्चा था। हाँ, गए कुछ सालों में 15-20 सालों में महाराष्ट्र में या मुंबई में, जो राजधानी है महाराष्ट्र की, उसमें इतनी बड़ी संख्या में कोई मोर्चा आया था ऐसा हम नहीं कह सकते। ये गए 15-20 सालों में का सबसे बड़ा मुंबई में निकला हुआ मोर्चा है।
अगर राजनीतिक दलों के झुकाव की बात की जाए तो सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है, कांग्रेस के नारायण राणे अपनी बात कह रहे हैं, आगे का रास्ता क्या?
ये जो इसके अगर राज्य के परिणामों की बात अगर आपको करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मराठा कोई एक ऐसे मोनोलिथिक ये नहीं है, कोई भी समाज इस तरह से नहीं होता है। मराठा हर पक्षों में हर पार्टियों में बिखरा हुआ है, वो इन मांगों को लेकर इकट्ठा आ रहा है। ज्यादातर इसका जनाधार जो था वो कांग्रेस के पास था, कांग्रेस और फिर कांग्रेस से निकली हुई राष्ट्रवादी, लेकिन इन मोर्चाओं के कारण ही जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो लोकल बॉडीज के चुनाव एक 5-6 महीने पहले जो हुए, उसमें बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा हो गया है ये दिखाई दिया, क्योंकि ओबीसी और खास करके एट्रोसिटी को हटाने की मांग को लेकर के दलित, ये दोनों बहुत ऑफेंडेड हो गए हैं समाज, और उन्होंने बीजेपी की तरफ अपना झुकाव दिया है। और मराठा भी पूरी तरह से कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं है, वो भी अलग अलग पक्षों में, उसमें का कोई हिस्सा कुछ हिस्सा भी बीजेपी के साथ है, तो उससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है। आज भी अगर आप देखोगे तो जो लोग इर्द गिर्द थे, जो बीजेपी के सहयोगी सदस्य बन गए, छत्रपति संभाजी राजे जिन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त राज्यसभा सदस्य है वो, तो वो भी आज स्टेज पर थे, वो भी इस मोर्चा में थे। हालांकि सारे ही पार्टियों के नेता उस मोर्चा में शरीक होने के लिए गए थे, क्योंकि ये समाज संख्या से बहुत बड़ा है, 30-35% है टोटल पॉपुलेशन का ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल इस समाज के बलबूते पर महाराष्ट्र की सत्ता अपने हाथ में आ सकती। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब ये समाज इकट्ठा होता है तो बाकी के समाज थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और वो उनसे भी ज्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं। तो इस गणित में इसका फायदा किसको होगा, तो आज की तारीख में तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसका फायदा आज जो सत्ता में है उस भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन चीजें कैसे बदलती है, चीजें क्या रुख लेती है।
मराठा समाज की राजनीति का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर, और फेसबुक पर बहुत सारे श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक स्कूली छात्रा की कथित तौर पर छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या करने का मामला सामने आया है। कल हुई इस घटना में अभियुक्त ने छात्रा पर चाकू से वार किया जिससे इस लड़की की मौत हो गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्य अभियुक्त और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। मामले की और जानकारी के लिए मैंने बात की बलिया के स्थानीय पत्रकार पंकज राय से।
दरअसल ये मामला बलिया जनपद के बाजी रोड इलाके का है। वहाँ एक गांव है बजहा, जहाँ की ये रहने वाली छात्रा थी। इसके परिजनों की माने तो इसके साथ 6 महीने से छेड़खानी हो रही थी और इस छेड़खानी का ही विरोध करने पर इसकी हत्या कर दी गई कल चाकू के हमले से।
पंकज, ये बताएं कि आपने इस पीड़िता के परिवार वालों से बात की, आपकी उनकी बहन से और माँ से बात हुई, उन्होंने क्या घटना की जानकारी क्या दी, किस तरह से ये छेड़खानी की घटना हुई?
उसकी बड़ी बहन ने हमें बताया कि करीब बहुत दिनों से 6 महीने से उसके साथ छेड़खानी की घटना हो रही थी। एक दिन पहले भी घर के सामने आकर के उसने धमकी दिया था, हालांकि धमकी को इग्नोर करते हुए काफी दिनों बाद कल वो स्कूल के लिए निकली थी और घर से कुछ ही दूरी पे अब छोटी बहन के साथ वो जा रही थी, तब तक वो बाइक से आया, इसको धक्का मार के गिरा दिया।
लगभग 6 महीने से ये इसको परेशान कर रहा था, कहीं से इसका नंबर इसको मिल गया था, तो इसने घर पे बताया तो मम्मी ने उसको कई बार समझा दिया, समझाने के बावजूद वो मान जाता था। उसके घर पे जब कंप्लेन होती थी उसके पापा उसको डांटे होंगे, एक दो बार वो मान गया, उसके बाद सारा मामला ठंडा हो गया। फिर कुछ दिनों से वो मतलब ज्यादा परेशान कर रहा था, इसको कह रहा था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा, तुमको ब्लैकमेल करूंगा, मार डालूंगा, ऐसी धमकियां दे रहा था। तो जब वो सुबह स्कूल जाने लगी तो स्कूल के लिए तैयार होकर वो वहां तक पहुंच गई, तब तक पीछे से हम लोग देख रहे हैं कि वो बाइक से जा रहा है। दो लड़के वहां पहले से जाके देख रहे थे कि ये स्कूल के लिए निकल गई है, वहां से उन लोगों ने इसको फोन किया। तो ये दोनों भाई अपना बाइक से निकले घर से, अपने स्कूल के लिए साइकिल पर बैठ रही है, वैसे ही वहाँ उसको धक्का दे के गाड़ी से गिरा के और चक्कू से मार के, चक्कू वही झाड़ी में से बरामद हुआ है, वही झाड़ी में फेंका।
पीड़िता की माँ ने बताया कि काफी दिनों से इसके साथ वो बदतमीजी करता था, घर तक भी चला आता था, रास्ते में भी छेड़छाड़ के साथ करता था, यहाँ तक कि मोबाइल पे फोटो खींच करके वायरल करने की धमकी देता था, लगातार इसको परेशान करता था वो।
कितने दिन पहले से धमकी दे रहा था, छेड़खानी वगैरह कर रहा था?
एक हफ्ते से।
स्कूल नहीं जा रही थी?
नहीं, उस वजह से स्कूल कोई बात नहीं थी, बीच में बच्ची का तबीयत डिस्टर्ब हो गया था, बनारस चले गए थे।
छेड़खानी तो करता था ना इसके साथ?
हाँ, सामने वाले पत्थर बैठ कर छेड़खानी करते थे।
इसके बाद क्या मतलब चाहती है, क्या सजा मिले?
सजा क्या मिले, खून के इंसाफ मिले, खून के बाद खून मिले, जैसे मेरे बच्ची का जान लिया है उसी तरह मिले उसको।
तो जब ये परेशानी लंबे अरसे से थी तो इनके माता पिता ने, जो पीड़ित के माता पिता हैं, इन्होंने क्या पुलिस में कम्प्लेन दर्ज नहीं करवाई?
दरअसल ये इन्होंने लोक लाज के भय से पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में सूचना नहीं दी, सिर्फ उसके मुख्य आरोपी जो है उसके पिता को बताया।
तो पंकज जी बताएं कि पुलिस ने इस मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की है?
जी, घटना के बाद पूरे जनपद में बड़ा ही आक्रोश पनप गया और इसको देखते हुए पुलिस पे भी काफी दबाव बढ़ गया था। पुलिस ने घटना के करीब 8 घंटे बाद ही मुख्य आरोपी को उसके एक और सहयोगी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पा लिया और 3 अभी अन्य आरोपी हैं जिनके लिए पुलिस दबिश लगातार दे रही।
उत्तर प्रदेश के बलिया में स्कूली छात्रा की छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या का मामला, जानकारी दे रहे थे स्थानीय पत्रकार पंकज राय। शिया वफ बोर्ड की कथित दावेदारी के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अब सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं बल्कि मुसलमानों का आपसी विवाद भी बन जाएगा। हालांकि ये मुसलमानों का आपसी विवाद करीब 7 दशक पहले था लेकिन अदालत में उसी समय निपट गया था। अब नए सिरे से ये विवाद क्यों शुरू हुआ और इसकी अहमियत क्या है, यही जानने की कोशिश की है लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र ने अपनी इस रिपोर्ट में।
शिया वक्फ बोर्ड ने खुद को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से उसे भी पार्टी बनाने की अपील करके इस विवाद को नया मोड़ देने की कोशिश भले ही की हो लेकिन उनकी इस कोशिश में कई तरह के पेंच दिख रहे हैं। एक और जानकार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जमीन के बंटवारे संबंधी विवाद के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, ऐसे में किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को पार्टी बनाने संबंधी याचिका में कोई दम नहीं है। तो दूसरी ओर शिया वक्फ बोर्ड की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं,
जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो बनाया भी गया था शिया वक्फ बोर्ड, तो उसके पीछे भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ही था, नहीं तो अलग से शिया वक्फ बोर्ड बनाने की कोई लॉजिक नहीं थी। जिन्होंने बनाया था वो लोग भी बड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे, तो वैसे भी शिया थोड़ा बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड ट्रेडिशनली रहे हैं यहाँ यूपी के। सुन्नी ने ही केस लड़ा, हमेशा ये बात होती रही कि सुन्नियों की मस्जिद है। अब इस लॉजिक से कि मीर बाकी किसको नहीं मालूम है कि मीर बाकी शिया था भाई, उसने तो बाबर के नाम पर बनाई थी ना, बाबर तो सुन्नी था, इसलिए इसमें ये कोई दम नहीं, ये इसको और कॉम्प्लिकेट कर देंगे जिससे हो जाएगा साहब एक और पेमेंट आ गया, मुस्लिम्स का क्लेम है उसको कमजोर करने के लिए।
दरअसल बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक को लेकर शिया और सुन्नी के बीच मुकदमा आजादी से पहले ही चला था और आजादी से पहले ही उसका निपटारा भी हो गया था। अदालत ने जमीन पर सुन्नियों के हक को मान्यता दे दी थी लेकिन अब उस बात को एक बार फिर अदालती लड़ाई में शामिल करने की कोशिश हो रही है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी अपने दावे के पीछे ये तर्क देते हैं,
मैं उसमें ऑलरेडी पार्टी हूँ, शिया वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड तो उसने 2010 में हाईकोर्ट ने उनका रजिस्ट्रेशन खारिज ऑलरेडी कर चुका है।
लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत तमाम मुसलमान धर्मगुरु और जानकार शिया वक्फ बोर्ड के इस दावे को सही नहीं मानते। जानकारों का यह भी कहना है कि जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड ने खुद को पार्टी बनाने की मांग की है उस दावे में भी दम नहीं है। मुस्लिम मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हिसाम सिद्दीकी कहते हैं,
मीर बाकी तो नौ करना है उसका बाबर का, मीर बाकी की कोई अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना, मीर बाकी बाकी जिस चीज का मालिक था वो तो फौजी था, उसको बाबर ने लगाया हुआ था, काम पे वो आया उसके मस्जिद बना दी, तो अपने फर्ज तो नहीं बनाओ इस पर ना, तो वो कोई विन कर सकता था इसके लिए, तो शिया और सुन्नी का सवाल कहाँ पैदा हो गया। असल में ये लोग जो सरकार में बैठे हैं बीजेपी के लोग, ये समझते हैं कि ऐसी चीजों से हम एक नया वो छोड़ देंगे और वो एक विवाद पैदा कर देंगे, इस तरह से विवाद आप पैदा कर दोगे भाई। 1886-88 के मामले चल रहा है, आज तक तो कहीं शिया वक्फ बोर्ड था नहीं, हरियाणा कहाँ से आ जाएगा भाई, कौन सी अदालत उसको मान लेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो इस तरह थोड़ा किसी भी राज चलते आदमी
वहीं एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि दरअसल ये फैसला शिया वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि उसमें बैठे कुछ पदाधिकारियों का व्यक्तिगत है और कहीं न कहीं इसके पीछे मौजूदा सरकार को खुश करने की कोशिश भी है। बकौल हिसाम सिद्दीकी,
शिया वक्फ बोर्ड के पास बहुत कीमती जमीनें रही हैं पूरे प्रदेश में, प्रदेश का देश भर में, यूपी में कुछ ज्यादा है। अब दो घरों हैं शिया कम्युनिटी में जिन्होंने उसको बेचा था, कब्जे करवाए हैं, लोगों को बेच दिया है, वो दोनों के झगड़े चल रहे हैं। तो अब वो दोनों ग्रुप जो है इस वक्त लखनऊ में कम्पटिशन पे बीजेपी को खुश करने के लिए लगे हैं कि सरकार उनसे खुश हो जाए और उनको अपर हैंड मिल जाए वक्फ बोर्ड पर। असल मसला यह है।
बहरहाल शिया वक्फ बोर्ड को इस विवाद में हिस्सेदारी मिलती है या नहीं ये तो अदालत को तय करना है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद में उसने खुद को सरकार और बीजेपी का हमदर्द साबित करने की कोशिश तो कर ही ली है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। पार्टीशन यानी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बीबीसी की खास पेशकश में आज रिपोर्ट उन दो शहरों की जिन्हें कि जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता था। बंटवारा हुआ और दोनों शहरों के बीच एक लकीर खींच गई। सुनिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की ये विशेष रिपोर्ट।
ये सीधी सड़क पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक जाती है और यहां से लाहौर सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी सड़क पर कोई सरहद नहीं थी। अमृतसर और लाहौर के बीच रात दिन आवागमन लगा रहता था क्योंकि इन्हें जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता था। मगर 1947 के बाद इन जुड़वा शहरों के बीच लकीरें खिंच गईं, बंटवारे की लकीरें। अमृतसर जिले के ही वाघा पर भारत पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर है सरहद रेस्टोरेंट। यहाँ पाकिस्तान की मशहूर ट्रक कला से सज्जित दो ट्रक मुख्य द्वार पर ही खड़े हैं। इन ट्रकों को पाकिस्तान के मशहूर कलाकार हैदर अली ने पेंट किया है। कहा जाता है कि पंजाब भले ही बट गया हो लेकिन लोगों का खान पान और व्यंजनों का बंटवारा नहीं हो पाया। जहां लाहौर के लोगों के लिए अमृतसरी व्यंजन आज भी बहुत आकर्षक हैं, वहीं सरहद के इस पार लाहौरी व्यंजनों को लेकर भी लोग आवक हैं। अमृतसर के पुराने लोग बताते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब लोग अमृतसर से लाहौर सिर्फ खाने के लिए जाया करते थे और फिर लौट आते थे। उसी तरह लाहौर से भी लोग अमृतसर सिर्फ खाने आते थे। ये बात बंटवारे से पहले की है। पंजाब की इसी खासियत को देखते हुए एक पहल की गई और सरहद के पास ही एक रेस्टोरेंट शुरू किया गया जिसका नाम भी सरहद रखा गया। इस सरहद रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सरहद रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले डीबी जसपाल कहते हैं कि दोनों देशों के बीच मैत्री के पैगाम को फैलाने के उद्देश्य से ही उन्होंने इस तरह का रेस्टोरेंट खोला है।
लाहौरी फूड यहां पर लोग बड़ा ट्राई करते हैं, कई तो आते हैं, वो कहते हैं हमें जो लाहौरी आइटम्स है वो दीजिए, और कुछ चीज़ें हम अक्रॉस द बॉर्डर भी लेके आते हैं, जैसे हमारी एक मरी ब्रूरी है, दैट्स द ओल्डेस्ट ब्रूरी जो है एशिया की, रावलपिंडी में है, तो वहाँ से नॉन अल्कोहलिक बियर, अल्कोहल वी कैनॉट इम्पोर्ट, सो नॉन अल्कोहलिक बियर हम यहाँ पर सर्व करते हैं। फिर खलीफा खताई है जो बड़ी फेमस वहाँ की। जब पहली बार मिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्वेरिंग के आए थे तो मेरे ख्याल वो 10 बॉक्सेस ये खलीफा खताई के लेके आए थे।
जसपाल कहते हैं कि इसके निर्माण के दौरान उन्होंने सोचा था कि खाने के साथ साथ कुछ ऐसा भी किया जाए जिससे उन लोगों को जो लाहौर नहीं जा सकते उन्हें लाहौर में ही बैठकर खाना खाने का एहसास हो।
मसाले भी पाकिस्तान से हम सोर्स करते हैं ओरिजिनल, क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं उनका वो टेस्ट नहीं होता जो वहाँ से, कई बार दिक्कत हो जाती है। हमारा फालसा का सिरप है वहाँ से लेके आते हैं, और ये जो शानदार चाय है हमारी कृषि इंडस्ट्री है बड़ी पुरानी वहाँ पर वो बनाते हैं, जो शानदार चाय भी वहाँ से।
रेस्टोरेंट के शेफ रघुवीर कहते हैं कि मेहमानों को लाहौरी पकवान बहुत पसंद आते हैं, खास तौर पर लाहौर की बिरयानी।
सरहद में यहाँ पे लाहौर चिकन बिरयानी खाने के लिए यहाँ पे फेमस है, लाहौर मटन बिरयानी खाने के लिए फेमस है, बिरयानी के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, सभी जब एक बार खाते हैं दोबारा भी दोबारा आते हैं, वाह वाह करते हैं।
सरहद के मालिकों का कहना है कि वो इस रेस्टोरेंट को शांति का म्यूजियम बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बंटवारे का म्यूजियम तो बन गया है, मगर जरूरी है कि शांति का म्यूजियम भी बने। खाना लोगों को जोड़ता है, इसलिए वो खाने के जरिए ही लोगों के बीच प्यार के बंधन को और मजबूत करना चाहते हैं। सलमान रावी, BBC, भारत पाकिस्तान सीमा, वाघा।
भारत पाकिस्तान विभाजन पर BBC की ये विशेष प्रस्तुतियां आपको कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर लिखिएगा। और हम आप यहां पर आपको बता दें कि bbchindi.com पर इस समय जो शीर्ष खबर है वो है जब भारत को था जापान के हमले का डर, और ये विशेष रिपोर्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरा होने पर इतिहासकार मृदुला मुखर्जी जो सोचती हैं उसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही भारत पाकिस्तान विभाजन पर महिंद्रा और मोहम्मद का वो दिलचस्प किस्सा, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आज के दिन नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, क्यों बम गिराया गया, वही जगह क्यों चुनी गई, इस खबर को पढ़ने के लिए भी bbchindi.com पर आएं, जो कि आपको ज़रूर पढ़ें कि सेक्शन में आपको मिल जाएगी, इसे ज़रूर पढ़ें। और अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेल समाचारों की। आज सामने मौजूद हैं इंदु पांडे, आज चिट्ठियां नहीं है खेल की खबरें हैं।
जी, शुरुआत करते हैं क्रिकेट से।
जी,
भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की दूसरे टेस्ट में, जहां श्रीलंका को हरा के इतिहास रचा, दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर रविंद्र जडेजा जीत के हीरो रहे, और जडेजा ने 9वीं दफ़ा एक पारी में 5 विकेट झटके और तेजी से 150 विकेट हासिल करने वाले लेफ्ट आर्म भी बने, लेकिन इसके साथ ही उन पर 1 मैच का बैन भी लग गया। अब जडेजा की गैर मौजूदगी में चाइना मैन कुलदीप यादव को तीसरे टेस्ट में मौका मिल सकता है। कुलदीप यादव ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 टेस्ट मैच, 1 T20 और 5 वनडे मैच ही खेले हैं, और टेस्ट मैच किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
लाइफ तो चेंज होती है अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इससे बड़ा प्राउड आप अपने फैमिली को नहीं दे सकते, और मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो खुशी की बात है। और जिस तरह बचपन से स्टार्टिंग से मेहनत की है उसका रिजल्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है।
खुश तो श्रीलंका के बैट्समैन नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक कुलदीप यादव को वो खेले नहीं है, और श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से पल्लिकल में खेला जाना है। और अब बात करते हैं हम बैडमिंटन की। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को 21 अगस्त से ग्लासगो में होने वाली BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 4थी और 8वीं वरीयता दी गई है। दुनिया की 16वें नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल को टूर्नामेंट में 12वीं वरीयता दी गई है। और टेनिस में, टेनिस खिलाड़ी विष्णुवर्धन चीन के जिनान में चल रहे ATP चैलेंजर इवेंट के सिंगल्स में अकेले भारतीय बचे हैं, और इस टूर्नामेंट में 5 दूसरे भारतीय पहले राउंड में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया इंदु पांडे खेल की खबरें सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
BBC समाचार। महाराष्ट्र के मुंबई में आज मराठा महारैली का आयोजन हुआ। इस मॉक रैली में 4 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में आज 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को याद किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा BJP अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उनके देश को उत्तर कोरिया से कोई खतरा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को कड़ा संदेश दिया है और उन्हें उम्मीद है कि उत्तर कोरियाई नेता इसे समझेंगे। फ्रांस में पुलिस ने सैनिकों पर हमला करने वाले हमलावर का पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। कीनिया के राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी उम्मीदवार राइला ओडिंगा ने चुनाव आयोग का आईटी सिस्टम खराब किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ऐसा चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के मकसद से किया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के संक में बस आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे और इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें, नमस्कार।